ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂ ಬಾರ ಅಡ್ಸಟ್ ರೂಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ ಸಮಝಾ ರೇ ಹೇ ಏಕ ಹೇ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ ಕಿ ಮತ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಹೇ ಆಸುರಿ ಮತ रूहानी बाप की मत एक ही है और मत देने वाला बाप भी एक ही है और आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। ये है ही असुरों की दुनिया। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे कि असुर कहा ही जाता है जो सुर में सुर मिलाकर के बात नहीं करते उनको कहा जाता है असुर। बात को बेसुरी कर देते हैं कोई तुकतान ही नहीं। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना क्योंकि अनेक मुख हैं। वो अनेक मुखों में से एक सुर निकलेगा या अनेक सुर निकलेंगे। अनेक सुरों वाली बात को आसुरी मत कहा जाता है। बाप एक बात समझावेंगे असुर अपनी मनमत मिक्स करके मनुष्यों की मत मिक्स करके शास्त्रों की मत मिक्स करके दूसरी बातें बताई देवेंगे और बाप तो एक होता है। रावण के तो दस सिर हैं दस बाप तो नहीं होंगे ना। और एक बाप से संपत्ति मिलती है वर्षा मिलता है अनेकों बाप से वर्षा थोड़ी मिलेगा। तो रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। वो है ही रावण की आसुरी मत और अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण का धारण करते हैं क्योंकि ईश्वर आकर के आसुरी मनुष्यों को देवता बनाते हैं अर्थात नरक को नारायण जैसा बनाते हैं तो दैवी गुण धारण कराते हैं। और ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को तो ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है। ईश्वरीय मत दिव्य लोक देवताओं के लोक में ले जाती है और आसुरी मत वैश्यालय में ले जाती है। ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरती आई। नई दुनिया से थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। इस एक जन्म में जबकि बाप आए हैं संगम युग पर, तब ही चढ़ना होता है, बाकी जन्मों में उतरना होता है। पहले धीरे धीरे उतरते हो, बाद में रावण की मत मिलती है तो तेजी से उतरने लग पड़ते। अभी तो श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो ना, तो तुम जानते हो कि हम श्रेष्ठ मत फिर कैसे पावेंगे। अपनी ऊंच पद तुम अनेक बार श्रीमत से पाए हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो, और चढ़ने में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। एक जैसे पुरुषार्थी तो हो ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं चढ़ने में भी टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम पूरा एक्यूरेट है, तो ड्रामा बड़ा ही एक्यूरेट चलता है और ये है बहुत वंडरफुल। बच्चों को समझने में बड़ा सहज आ जाता है कि बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस, और तो कोई बात नहीं। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को कठिन भी लगता है, इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का ही मिलता है तो सेकंड की बात। फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तो माया के बिगन पड़ते हैं। रावण पर जीत पाना होता है, सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से हर कल्प जीत पहनते आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। अभी भी हम जीत पहनेंगे, रावण पर जीत पहनाने वाला कोई साधु संत महात्मा नहीं है। महात्मा नहीं है, महान आत्मा नहीं है। अरे महान आत्मा तो छोटा हो गया, परमात्मा है। परमात्मा तो है परंतु आता किसमें है, किसमें आता है? मनुष्य तन में आता है। और मनुष्यों में भी कौन से मनुष्य तन में आता है? ऐसे मनुष्य तन में आता है जो षष्ठ चक्र में पूरे 84 जन्म लेता है, पूरा पावन बन करके चक्र लगा करके पूरा पावन से पतित बनता है। पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता हूं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए, तो फिर साधु संत महात्मा कहेंगे? साधु संत महात्मा तो नहीं कह सकते। हाँ ये कहेंगे उस तन के द्वारा सिखलाने वाला बेहद का रूहानी बाप है। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, अब बाबा किसे कहा जाता है वो तो कोई को पता ही नहीं है। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। गीता में भी लिखा तो है ना, अणोणीयान सम्मरेत, अणु से भी अनुरूप आत्मा है, तो ऐसे तो नहीं जानते थे। जानते तो थे कि आत्मा अनुरूप है, तो आत्माओं का बाप भी कैसे होगा। सांप लंबा है, सांप का बाप लंबा ही होगा। चींटी छोटी सी है, तो चींटी का बाप भी छोटा सा ही होगा। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अणु है, तो बाप भी तो अणुरूप ही होगा ना। तो देखो कैसा विचित्र ड्रामा है, इतनी छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आई नहीं कि अणुरूप आत्मा का बाप भी अनुरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और उसका बड़ा रूप भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाया है। हाँ कहते थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के आकुपेशन को जानते थे और न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। तो बाप ही खुद आकर के समझाते, बाप बिगड़ तो कब कोई रियलाइज करा ही नहीं सकता। क्या अभी कौन सा कोर्स चल रहा है बच्चों का? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइज करो कि कौन सत्य बताते हैं, सत्य बात बताकर सत्य की स्थापना करते हैं, और कौन झूठ बता करके झूठ खंड की स्थापना कराई देते हैं। बाप को खुद आना पड़े रियलाइजेशन कराने के लिए, और तो कोई का पार्ट नहीं है। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, और ईश्वरीय संप्रदाय के जस्ट उल्टा आसुरी संप्रदाय। यूं तो सभी आत्मा ईश्वरीय संप्रदाय ही है, या अगर सभी आत्माएं आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं, तो कौन सा संप्रदाय हुई? ईश्वरीय संप्रदाय है। फिर पार्ट बजाने के लिए ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनकर के पार्ट बजाते हैं। इतना समझना तो बहुत सहज है, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें माया बिघन डाल देती है, बातों को भुलाए देती है। बाप कहते हैं नंबर वार को सात अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। कोई आसुरी मत पर भटकते रहेंगे तो राजधानी में नीचा पद पा लेंगे, कम भटकेंगे तो पद نمبر وار اونچا بنے گا. یہ سوری ونشی چندر ونشی راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے. کیا جو راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے وہ سوری ونشیوں کے میل سے اور چندر ونشیوں کے میل سے استھاپن ہو رہی ہے. کیا انتر ہے دونوں میں؟ سوری ونش میں ایک سوریہ کا ہی گیان پرکاش چلتا ہے, سوریہ اگتا ہے تو کیا رات کی طرح دن میں ستارے آکاش میں نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں لیکن ان کا پرکاش سوریہ کے سامنے ان کا پرکاش ٹکتا نہیں ہے. اور چندرما میں کیا انتر ہے؟ چندرمن سے کہتے ہیں, چندر میں کیا انتر ہے؟ چندرما کی بھی روشنی ہے. اگر چندرما ڈم روشنی والا ہو جاتا ہے تو ستاروں کی بھی روشنی کام کرنے لگ پڑتی ہے. تو ایک کا گیان پرکاش ہوا یا انیکوں کا گیان پرکاش ہوا؟ ایک کا ہوا رات میں, انیکوں کا گیان پرکاش ہو گیا. ایک ایک بات سنائے گا, دوسرا دوسری بات سنائے دے گا, تیسرا تیسری بات سنائے دے گا. تنڈے تنڈے متر بھنا ہو جاتی. تو سوری ونش اور چندر ونش یہ دو پرکار کی راجدھانیاں اسپشٹ نظر آنی چاہیے. سوری ونشی کون ہے اور چندر ونشی کون ہے؟ سوری ونشی وہ ہے جو ایک کے علاوہ اور کوئی قیمت نہیں مانتے. پکا پکڑ لیتے ہیں, پکا باپ کو پہچان لیتے ہیں اور اس قیمت پر چلتے ہیں. چندر ونشی وہ ہے جو نہ خود باپ کو پہچانتے ہیں پورا پورا اور نہ دوسروں کو پہچاننے دیتے ہیں, دوسروں کی بدھی کو بھی متی برم پیدا کر دیتے ہیں. نہیں نہیں یہ ایسا ہے, ارے ایسا نہیں ہے ویسا ہے, تو متی برم پیدا ہو جاتا ہے. اب شاستروں سے تو یہ باتیں کوئی سمجھ نہیں سکتا. کیا کہ سوری ونش میں اور چندر ونشیوں میں کیا انتر ہے؟ ہاں باپ جو راجدھانی استھاپن کرتی ہے اس میں سوری ونشی اور چندر ونشی دونوں کا میل ہے. کیا کیا انتر پڑتا ہے میل؟ جو میل ہے اس میں انتر کیا پڑتا ہے؟ انتر یہ پڑتا ہے کہ جو سوری ونشی ہے وہ ڈائریکٹ باپ سے اسی جنم میں اسی شریر سے برسا لیتی, اور جو چندر ونشی ہیں چندر ونشی جو ہے وہ اس شریر میں پرویش تو کرتے ہیں پرنتو اپنے شریر کے دوارا ورثے کی انبھوتی نہیں کر پاتے. ان کو اپنا شریر کہاں ملے گا؟ اترتی کلا کا جب ڈراما شروع ہوگا تب ان کو جنم ملے گا. تو کتنا بھاری انتر پڑ جاتا ہے. آسری مت پر چلنے کا اور ایشوری مت پر چلنے کا انتر بتایا. ایشوری مت ایک اور آسری مت انیک پرکار کی, انیک پرکار کی مت پر چلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور ایک کی مت پر چلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ یہ بدھی میں بیٹھنے کی بات ہے. ابھی گیتا آدی تو اس نے بھی بہت پڑھی. اس نے برہما بھون ابھی باپ کہتے ہیں یہ بھکتی مارگ کا بھوسا ہے. جو بھی گیتا پڑھی ہے وہ بھکتی مارگ کا بھوسا ہے. چلو وہ تو بھکتی مارگ میں پڑھی 63 جنم, अब इस जन्म में, इस जन्म में अंतर क्या पड़ता है? जो चंद्रमा का पाठ बजाने वाली आत्मा है उसने भी गीता पढ़ी, जो सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा है उसने भी गीता पढ़ी, और ब्राह्मण जन्म लेकर के ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली गई वो ब्रह्मा ने भी पढ़ी। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के मुख से एक बार बोला जाता था वो दोबारा ब्रह्मा बाबा पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ते तो थे, इसने भी पढ़ी है और तुमने भी पढ़ी है। वेदवाणी तुमने भी पढ़ी, वेदवाणी इसने भी पढ़ी, इसके फॉलोअर्स ने भी पढ़ी, अंतर क्या है?
लोग समझा नहीं तो समझा नहीं।
अंतर ये है कि ये बच्चों की रग में आ जाता था और तुम एक बाप के सिवाय और किसी के प्रभाव में नहीं आते हो। बाप कहते हैं सिर्फ पढ़ना करना, सुनना और सुनाना, ये तो भक्ति मार्ग का भूसा है। गीता में सबसे बड़ी भूल क्या हुई है? बड़ी से बड़ी भूल हुई है दुनिया की, गीता का भगवान कष्ट को समझ लिया है, साकार को। तो गीता ही झूठी हो गई, और जो गीता झूठी हो गई वो झूठी गीता सारा का सारा भूसा हो गया, सार तो निकल गया। गीता का जो सर्वनाइजर बाप है उसका तो पता ही नहीं। तो जब बाप गीता में से निकल गया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, तो बड़े से बड़ा भारी जुल्म हो गया। क्या जुल्म हो गया? क्या जुल्म हो गया? गीता है माता और गीता पति है भगवान, और गीतापति भगवान की जगह उसका सर्वनाइजर किसको मान लिया? कृष्ण बच्चे को मान लिया। तो आज की दुनिया का क्या हाल हो गया? कोई भी धर्म संप्रदाय में चले जाओ, कोई भी उनके परिवार में चले जाओ, माताओं का क्या हाल है? और खुदा न खास्ता बाप मर जाए तो माता और बच्चे का क्या सलूक रह जाता है? बच्चा बाप माँ के ऊपर कंट्रोल करता है या माँ बाप बच्चे के ऊपर कंट्रोल करती है? कौन किसका कंट्रोलर रहता है? बच्चा माता का कंट्रोलर हो जाता है। घर घर में गीता का भगवान, माता का भगवान, माता का पति परमेश्वर कंट्रोलर चलाने वाला बच्चा बनकर के बैठ गया। इतना भारी जुल्म हो जाता है। अभी बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि में से निकाल दो। क्या जो गीता आदि पढ़ी है इनकी कोई वैल्यू नहीं है? लकड़ी की भूसी की वैल्यू क्या होगी? भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं। परंतु जब भक्ति मार्ग है तब तो वो ही चलता है। ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान ही चलना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। बाप कितना छुड़ाने की कोशिश करते हैं परंतु छोड़ते ही नहीं। क्या छुड़ाने की कोशिश करते हैं बाप? क्या कोशिश करते हैं? भक्ति छुड़ाने की कोशिश करते हैं। भक्ति मार्ग छोड़ दो, ये भागना करना छोड़ दो। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मंदिर में जाएंगे भाभी माथा टिका देंगे। कन्वर्ट हो गए भक्ति मार्ग में, कन्वर्ट भी होते हैं ना। मुसलमान बन गए तो वहां जाके मस्जिद में माथा टिकाएंगे। कोई गिरजाघर में जाकर के कन्वर्ट हो जाते तो वहां जाकर के माथा टिकाएंगे। अच्छा, कन्वर्ट नहीं हुए कोई धर्म में, अपने ही धर्म में रहे तो कहीं कोई देवता के सामने माथा टिकाएंगे, कोई देवता के सामने माथा टिकाएंगे, कहीं एक गुरु को पकड़ेंगे, कहीं दूसरे गुरु को पकड़ेंगे, बस बुद्धि भागती रहेगी। बुद्धि को कोई भी ठिकाना मिलता ही नहीं कि किस कीमत पर चले। तो बाप तो ठिकाने पर बुद्धि बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भक्ति मार्ग छोड़ते ही नहीं। ये भक्ति में कितना कीचड़ा चलता है क्या? जब उल्टा रास्ता बुद्धि में बैठ जाता है तो कीचड़ा बढ़ेगा या घटेगा? कीचड़ा ही कीचड़ा चलता है, आधा कल्प उस पर हेरे हुए तो जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे। इसकी बात की दुनिया भी भक्तों की बात कर रहे हैं या बच्चों की बात कर रहे हैं?
बच्चों।
आधा कल्प 63 जन्म भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं तो जल्दी भक्ति मार्ग थोड़े ही छोड़ेंगे। ये बुद्धि का भटकाना जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे। नंबर वार छूटते रहते हैं इस भक्ति मार्ग के भटकने से। और सभी का तो भक्ति मार्ग छूट भी नहीं सकता। क्या कितनों का छूटेगा भक्ति मार्ग? कितनों का छूटेगा? ब्रह्मा का भक्ति मार्ग छूटा? दे रहे थे तो छूटा नहीं। अच्छा, उनके भक्तों का भक्ति मार्ग छूट गया? उनके फॉलोअर्स का छूटा? उनका भी नहीं छूटा। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुष अर्थात आत्मा, और आत्मा के अर्थ क्या क्या करना है सो तो बाप ही बताते। देह के पोषण के लिए तो रावण बताता है, रावण संप्रदाय वाले बताते हैं, नौकरी करो, धंधा करो, ये करो, वो करो। और आत्मा के पोषण के लिए सिर्फ बाप ही बताते हैं कि 21 जन्म का पोषण तो मैं पक्का करा देता हूं। इस 21 जन्म के लिए तुम्हें कोई भी मुसीबत नहीं आवेगी, कोई भी प्रकार का खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। 21 जन्म के लिए तो तुम पूरे सुखाला रहेंगे। बाकी 63 जन्म भी 21 जन्मों के आधार पर हिसाब किताब बन जाता है। अगर 21 जन्मों में ऊंचते ऊंच पद रहा तो 63 जन्मों में भी तुम ऊंचते ऊंच स्टेज ही पाए लेंगे। तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। पुरुषार्थ माने, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए जो किया जाए सो पुरुषार्थ, और शरीर के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ नहीं है, परमार्थ भी नहीं है। वो देह के लिए जो कुछ किया गया सो सब रावण के लिए किया। रावण की दुनिया बनेगी, ईश्वरीय दुनिया नहीं बनेगी। हाँ, ये कहेंगे धंधा आदि कोई का रायल होता है, कोई का धंधा छीछी होता है। मछली का व्यापार करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं तो क्या कहेंगे, कैसा धंधा है? छीछी धंधा है। शराब बेचते हैं ना, शराब तो सब विकारों को खींचती है। जो शराबी होगा उसमें कोई भी विकार ऐसा रहेगा नहीं जो अति को न पहुंच जाए। ये धंधा बहुत खराब है, शराब सभी विकारों को खींचती रहती है। किसको शराबी बनाना, ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो। लौकिक धंधे की ही बात पता हम पढ़ाते हैं या अलौकिक धंधे की भी बात पढ़ाते हैं है? ये जो बात बताई वो लौकिक दुनिया वालों के लिए बताई, उनका धंधा सुधारने के लिए बताई, या अलौकिक में भी कोई शराब का धंधा होता है? अलौकिक में क्या होता है?
आंसू का शराब
क्या संकल्प
का लेन देन,
उससे दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने अपने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे का क्या धन नुकसान होगा। यहाँ तो बोला किसी को शराबी बनाना ये धंधा बहुत खराब है, हमने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो फिर बाद में होता है,
दृष्टि का लेन
है, दृष्टि का लेन देन। ये धंधा जो है, जैसे वो शराब पीने से कितना थोड़े समय के लिए नशा चढ़ जाता है, ऐसे ये आंखों की शराब जो है ये ऐसी विधिचारी बनाती है कि लोगों को अल्पकाल का बड़ा नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं इस धंधे को छोड़ दो, छोड़ने में फायदा है, युक्ति से छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है जल्दी कि ये धंधा बाप का बताया हुआ धंधा नहीं है। क्या एक दूसरे को बैठ करके दृष्टि दो, उस दृष्टि के लेन देन से कोई सृष्टि सुधर जाएगी? ये एक धंधा बनाया हुआ है। क्या उस घर खोलो, कन्याओं को संदली पर बैठाओ, नए नए नौजवानों को आकर के अंदर बुलाओ और ये धंधा चलाओ। अब वो नौजवान तो फंस जाएंगे ना, तो धंधा चालू हो जाएगा। बड़े बड़े घराने के नौजवान आएंगे, खूब पैसे वाले होते हैं, तो ज्यादा आमदनी होगी, कम आमदनी होगी, आमदनी तो बहुत बढ़ जाएगी। बाप कहते हैं ये धंधा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर दो, नहीं तो तुम यूं उच्च पद पाए नहीं सकेंगे अगर ये धंधा चलाते रहे। ये धंधा चलाने से क्या होगा, जैसी दृष्टि लेंगे, दृष्टि लेने वाले की वृत्ति वैसी ही बनेगी, या अच्छी दृष्टि बनेगी। दृष्टि देने वाले की जैसी दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, वैसी ही लेने वाले की दृष्टि वृत्ति बनेगी, या उत्थान होगा, उन्नति होगी, उन्नति नहीं हो सकती। बाप कहते हैं सभी धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के और सब धंधे नुकसान करने वाले। दृष्टि से वृत्ति बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी तो संकल्प कैसे चलेंगे, खराब संकल्प चलेंगे। जब अपने अंदर खराब संकल्प चलेंगे तो हम दूसरों को ज्ञान कैसा सुनाएंगे, मिक्स ज्ञान सुनाएंगे। ईश्वरीय जो ज्ञान की बातें हैं उनमें अपनी मनमत मिक्स करके सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन सभी धंधों में नुकसान है, बिगड़े अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरात का धंधा आदि ये करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखापति बन गए। आज की दुनिया में करोड़पति अरबपति बन जाते, फायदा होता है क्या? पुरुषार्थ होता है, आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा कल्याण तो होता है। तो इस धंधे से तुम क्या बनते हो और उस धंधे से क्या बनते हो, बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली सो भी तुम तो 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। 2268 की वाणी का दूसरा भेद तुम समझते भी हो कि बाबा ये बातें कहते तो बिल्कुल ठीक है, जो हम अभी हैं वो ही हम सुदेवता थे, हमारी दिव्य बुद्धि थी। कैसी दिव्य बुद्धि थी, कैसी दिव्य बुद्धि थी, अभी भ्रष्ट बुद्धि बन गई। हम देवता थे तो हमारी दिव्य बुद्धि थी, अर्थात हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी। कितने जन्म तक, 21 जन्म तक हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी, और अभी हम भ्रष्ट बन गए। तो कोई ने ये धंधा चलाई दिया शराब का, तो बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठते ही, बुद्धि में बैठता ही नहीं, हम ये भ्रष्ट धंधा सीख लिया, फटाक से भ्रष्ट धंधे में उलझ गए। बड़ा आनंद आने लगा, अहो नशा चढ़ गया। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भले बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन नशा अल्पकाल का बहुत चढ़ता था। तो तुम भी समझते हो कि बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है, पहले हम सूर्य देवता थे, हमारी दिव्य बुद्धि थी, जब तुम्हारी दिव्य बुद्धि थी तो दृष्टि भी हमारी व्यभिचारी थी, अब व्यभिचारी थी, अब व्यभिचारी थी, और वृत्ति भी हमारी अब व्यभिचारी थी, एकाग्र बुद्धि थी, आत्म की याद थी, अनेकों की याद हमको देहधारियों की नहीं आती थी। फिर पीछे चक्र लगाते लगाते हम नीचे आ गए, सृष्टि के आत्मध्यक्ष को भी जान गए। नालिश तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैव गुण भी तो धारण करते हैं, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या कहा, देवताओं से टैली करो अपने गुणों का, देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो देवताओं से मिलते जुलते गुण हैं। हमारी दृष्टि जैसी देवताओं की दृष्टि होती है वैसी ही दृष्टि और वृत्ति है, हमारी कृति हमारे कर्म देवताओं के जैसे कर्म हैं, हम जिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है या भ्रष्ट कर्म है, ये तो बाबा भी जानते हैं। हमने ये अपना शरीर रूपी मकान लिया है और इसने ये शरीर रूपी मकान दिया है, क्योंकि ये मकान है ना, किसके रहने के लिए, आत्मा के रहने के लिए ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको तो बहुत फकुर रहता है, किनको, मकानदार को, जो मकान का मालिक है उसको तो बहुत फकुर रहता है। क्या फकुर रहता है, बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है, हमारा मकान ऊंच पे ऊंच भगवान ने आकर के लिए, हमने भगवान को अपना मकान किराए पर दिया। हम कितने ऊंचे मकान मालिक हैं, ड्रामा प्लान अनुसार उनको और कोई मकान लेना ही नहीं है सिवाय मेरे मकान के। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा चढ़ गया, कल्प कल्प यही मकान लेना पड़ता है, पड़ता है माने शिव बाबा की भी मजबूरी है कि कल्प कल्प शिव बाबा को मुरली चलाने के लिए कौन सा मकान लेना पड़ता है, ब्रह्मा दादा लेखराज का ही मकान लेना पड़ता है। क्यों, मजबूरी क्या है, कोई दूसरा मकान ले ले, हाँ माता गुरु का उद्धार करना पड़े पहले, सबसे ज्यादा पतित कौन हुए हैं? सबसे ज्यादा पतित माताएं हुई। माताओं में भी एक होती है स्त्री चोला से माताएं, और एक होती है संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार उनमें ऐसे हैं जो माता का पार्ट है, अर्थात आत्मा का ऐसा पार्ट है कि अनेक जन्म जन्मांतर उन्होंने माता जैसा पार्ट बजाया, तो वो आत्मा कौन? तो एक ब्रह्मा ही है। तो बोला सबसे ज्यादा पतित माताएं बनी। तो यही मकान लेना पड़ता है, इनको तो खुशी होती है, परंतु फिर भी हंगामा कितना मचा हुआ है। ये बाबा कब हंसी कुड़ी में बाबा को कहते भी हैं, मैं आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी, ना आपका रथ बनता ना हमको इतनी गाली खानी पड़ती। तो ये ठाकुर की बात हुई, नशा चढ़ने की बात हुई या नशा उतर गया? ऐसी बात जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बोली, तो ऐसी बात बोलने वाले का नशा उतर गया या चढ़ गया? उतरने वाली बात होगी। इसका मतलब घड़ी घड़ी फकुर होता था और घड़ी घड़ी शोक होने लगता है कि हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो शिव बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे शिव बाबा? कहेंगे आत्मा थोड़ी गाली खाती है, देह देहवान गाली खाता है कि आत्मा गाली खाती है? तुम देहवान में क्यों रहते हो? बाबा ने तो सिखाया हुआ है, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो तो गाली क्या चिपक जाती है? चिपक जाती है गाली? कोई ग्लानी करता है हमारे मुंह के सामने, या 10-20-15 हजार 2 हजार आदमियों के सामने ग्लानी करता है, अखबार में डाल देता है, रेडियो में डाल देता है, टेलीविजन में आ जाती है ग्लानी, तो क्या ग्लानी हमको चिपकती है? शिव बाबा को ग्लानी चिपकती है या देहधारी को ग्लानी चिपकती है? देहधारियों को ग्लानी चिपकती है। बाबा कहते हैं कि तुमको तो इतनी ग्लानी नहीं मिलती है। शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बच्चे तुमको तो इतनी ग्लानी नहीं मिलती है जितनी मुझको मिलती है। सबसे जास्ती ग्लानी, सबसे ज्यादा गाली कौन खाते हैं? शिव बाबा की ग्लानी सबसे जास्ती होती है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ब्रह्मा की होती है। अभी तुम्हारी बारी है क्या? अभी तुम्हारी बारी है, आगे चल के जब मैं डायरेक्ट पार्ट बजाऊंगा तो मेरी बारी होगी। आदि में मैंने पार्ट बजाया, एंटीओम मंडली बनी थी ना, आदि में मैंने पार्ट बजाया तो मेरी ग्लानी हुई। तो मेरा पार्ट आदि में भी है और अंत में भी। अभी तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है पहले, लौकिक जीवन में कब इनको गाली मिली नहीं है, अभी बारी आई है। रथ दिया है ये तो समझते हैं, तो जरूर बाप की मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। कौन बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम मेरे से जास्ती तीखे जाते हो। कौन? ब्रह्मा बाबा ने किससे कहा?
भविष्य के पार्ट से।
जिन बच्चों को शिव बाबा इमर्ज करते थे उन बच्चों को कहा, क्या कहा? तुम बच्चे मेरे से भी जास्ती तीखे जाते हो याद की यात्रा में, निरंतर याद मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन तुम निरंतर याद करते हो, क्या कारण? جن کے متھے معاملہ، زیادہ وزن کون ڈھوتا ہے؟ ذمہ واری کا زیادہ وزن کس نے ڈھویا؟ کیوں برہما بابا نے کیوں ڈھویا؟ برہما بابا کو تو 400 ہی ملی، شیو بابا کو کتنی ملتی ہیں؟ 16,000 کا پریوار ہو جاتا ہے وہ گوپیوں کا، تو زیادہ وزن کس کے اوپر ہوا؟ شیو بابا کے اوپر ہونا چاہیے، پھر ایسی کیوں کہتے ہیں؟ جن کے متھے معاملہ ان کے اوپر تو بہت، پوری بارات کی بارات، چار بارات ہیں جیسے، ان کی پالنا کرنی پڑی،
شیو بابا کو دیتے نہیں تھے ذمہ داری؟
نہیں، شیو بابا کو دیوان نہیں ہے، جس کو دیوان نہیں ہے اس کو کوئی چنتا نہیں رہتی، اور جس کو دیوان ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بڑا وزن پڑ رہا ہے، یہ انتر ہے، اس لیے گدھے کا مثال دیا ہے، وزن کس کے اوپر ڈالا جاتا ہے؟ گدھے کے اوپر وزن ڈالا، کمہار کے اوپر وزن ہوتا ہے کیا؟ دھوبی کے اوپر وزن ہوتا ہے کیا؟ دھوبی کے اوپر وزن نہیں ہوتا ہے، شیو بابا کیا ہے؟ شیو بابا تو دھوبی ہے، اور گدھا کون ہے؟ برہما بابا گدھا ہو گیا، پھر گدھی کسی کے تو فرسٹ کلاس پارٹ ہے چھوٹی ممی کا، برہما بابا کی بدھی زیادہ دبی رہتی تھی کہ مما کی بدھی دبی رہتی تھی؟ مما کی بدھی نہیں دبتی تھی، بوجھ نہیں انوبھو کرتی تھی، اس لیے راتے سے گیان بولتی تھی، نئی نئی باتیں بولتی تھی، منن چنتن منتھن کر کے کتنا بڑھیا گیان کا فرسٹ کلاس پوائنٹ نکالا، جو آج تک کوئی نے نہیں نکالا، کیا پوائنٹ؟ میں آتما جیوت بندو، تو پرم پتا پرماتما بھی جیوت بندو، یہ گیان آج تک اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں، پہلے پہلے مما نے یہ بات ایجاد کی، تو منن چنتن منتھن کیے بغیر ہو گیا، جس کا وزن زیادہ ہوگا دماغ میں وہ منن چنتن منتھن کر سکے گا کہ ہلکی پھلکی بدھی منن چنتن منتھن کر سکے گی؟ ہلکی پھلکی منتھن کر سکتی ہے، تو دیکھو نرنتر یاد کرنا، اس میں میرے سے تم جاستی تیکھے جاتے ہو، کیونکہ ان کے اوپر تو معاملہ بہت ہے نا، ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہے، ان کے اوپر ہے، بل ڈرامہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ لیس تو ضرور آتا ہے، برہما بابا کا جو آخری روپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنے کی پالنا کرے گی؟ کتنے کی پالنا کرے گی؟ ساری دنیا کی نہیں کرے گی، پریوار اندر کے پریوار کی بات بتاؤ، جس کا 16,000 کا پریوار کی پالنا کرے گی، یہ برہما کماری یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، راج کرے گا خالصا، تو انتم ٹائم پر جو برہمن پریوار ہوگا اتنا بڑا، ساری دنیا میں جس کا نام بالا ہو جائے گا، اتنے بڑے پریوار کی پالنا کرنے کا کام اس کا ہوگا برہما، لیکن روپ روپ دوسرا ہوگا، تو وزن پڑے گا بدھی میں کہ نہیں پڑے گا؟ بدھی میں وزن پڑے گا، کہاں وشو کی مہارانی، بدھی میں وزن پڑتا ہے، وشو کی مہارانی کون؟ ناری سے لکشمی، उसकी बुद्धि पे वजन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जगदम्बा की बुद्धि पर वजन पड़ेगा। तो लक्ष्य क्या है जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो फिर लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा हा? अगर बुद्धि में वजन होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जगदम्बा है तो नारी चोला, लेकिन फिर भी नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। ब्रह्मा का भी है तो नर चोला, लेकिन नर से नारायण नहीं बन पाते। बोला भले ये ड्रामा करके छोड़ देते हैं, परंतु लेस तो जरूर आती है। ये बेचारी बहुत अच्छी सर्विस करती थी, ये बच्ची खराब हो गई। ब्रह्मा बाबा को चिंता लग जाती थी। क्यों? ब्रह्मा बाबा को चिंता लग जाती थी। शिव बाबा को चिंता नहीं लगनी चाहिए? अच्छा, शिव बाबा को शरीर नहीं होता? उसको मोह नहीं होता है किसी का। अरे खराब हो गई, गिर गई तो ड्रामा में नून था, इसका पार्ट था, ऐसा चिंता किस बात की है? ब्रह्मा को चिंता होती है, बच्ची खराब हो गई, गिर गई, कितनी डिसर्विस हो गई, ऐसा ऐसा काम करते हैं बच्चे, तो इनको लेस आ जाती है। ये नहीं समझते, ये तो ड्रामा बना हुआ है। उस समय ड्रामा की बात बुद्धि में भूल जाती है, बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा बना हुआ। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत देर सर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। आज समाजी आदि तो हमारे बच्चे नहीं है। क्या कहा ये? क्या कह दिया हा? जो आर्य समाजी है ये तो हमारे बच्चे नहीं है। क्यों? ये हमारे बच्चे नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया?
वो भगवान को मानते नहीं। भगवान
को मानते नहीं? क्यों? निराकार भगवान को नहीं मानते?
देवी देवता को ही मानते।
ये को नहीं तो फिर
हाँ, वो देवी देवताओं को मानते ही नहीं, वो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं, वो निराकार को बिंदु को मानते। तो ये आर्य समाजी मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं हो तो वर्षा पावे, और वर्षा पाने के लिए साकार बाप चाहिए या निराकार चाहिए? वर्षा पाने के लिए तो साकार बाप चाहिए। साकार बाप की उनको पहचान होती है। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी जैसे डिस्टर्ब करते, उल्टा सुल्टा बकने लग पड़ते हैं। बाप ने समझाया है, अगर बकना करना सीखना हो तो किससे सीखो है? किससे सीखो? आर्य समाजी कही? आर्य समाजी शास्त्रों को मानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इतनी बक बक नहीं करते हैं जितनी व्यास ने की है। अगर बकना सीखना हो तो व्यास से सीखो, कितनी बकवाद लिख दी है। अब है तो ड्रामा, परंतु क्या बैठ लिखा है, और फिर नाम कितना बड़ा रखा है, कितना बड़ा नाम रखा है, व्यास भगवान। भगवान को कोई शास्त्र आदि पढ़ने का है ही नहीं, भगवान को कोई शास्त्र लिखने की दरकार है क्या? भगवान तो बैठ समझाते हैं, जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने बैठ करके क्यों कोई बाइबल, कोई कुरान, कुछ धम्मपद आदि लिखा क्या? उन्होंने बैठ बोला है, समझाया है या कुछ लिखा पट्टी की है? नहीं। तो धर्म पिताओं में ना जो भी धर्म के बाप हैं, उन बापों में बाप तो बड़े से बड़ा बाप एक ही है, वो भी कोई शास्त्र बैठ लिखते थोड़े ही है, ना उनको कोई शास्त्र पढ़ने का है। तो समझाते हैं, नाम रख दिया है गीता। अब श्री कृष्ण भगवान वाच तो है ही नहीं, अभी तुम तो जानते हो कि भगवान क्या सुनाते हैं। भगवान कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। तो देखो व्यास ने क्या क्या बैठ बनाया है, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितना गिराने वाले हैं, कितना मन कितना नीचे गिराते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता, वंडर लगता है ये शास्त्र बनते ही क्यों हैं। अरे अर्थ बात खुद बना, उसका अर्थ भी दे बताते जा रहे, जवाब भी दे दिया, बनते क्यों हैं ये शास्त्र, क्यों बनते हैं? गिराने के लिए। अच्छा हिंदू लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, विदेशी लोग तो नहीं पढ़ते, वो क्यों गिरते हैं?
संकट
दोष,
संकट
दोष, नहीं विदेशियों ने भी शास्त्रों की बहुत आलोचना की है, उन्होंने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है, शास्त्रों के अपने तरीके से अर्थ निकाले हैं। विदेशियों ने भी शास्त्र पढ़े हैं, तब तो उन्होंने जाना है कि चंद्रमा पर अमृत है, चंद्रमा पर देवताएं वास करते हैं, तो चंद्रमा को ढूंढो, चंद्रमा तक पहुंचो, दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, उनमें भी संसार है, मंगल पर पहुंचो, महाभारत युद्ध हुआ उसमें एटमिक एनर्जी की इजाद ये बुद्धि में कहां से आया? अग्नेय अस्त्र थे महाभारत में, ये बुद्धि में किसने बैठाया? शास्त्रों ने तो बैठाया, शास्त्रों में तो ये बात लिखी हुई है कि पेट से मूसल निकले उसे सारे संसार का विनाश कर दिया। तो ये बुद्ध रूपी पेट से विदेशियों के ये मूसल निकलते हैं, मिसाइल से। तो उनका भी पतन हो, इनका विदेशियों का। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में डूब है, इसको कहेंगे भावी ड्रामा की, जो इतने शास्त्र आदि बनते हैं, शास्त्रों के बगैर भक्ति कैसे हो सकती है? ये भी बननी है, इसलिए रावण के हाथ में भी क्या दिखाते हैं? वेद शास्त्र दिखाते हैं। अब ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। माना भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। फिर ब्रह्मा के हाथ में क्यों दिखाते हैं?
ब्रह्मा
हाँ, शास्त्र है और शास्त्रों को पढ़ा सुना, दूसरों को सुनाया और मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं निकला, नई बात कुछ भी निकली नहीं, तो अनर्थ होता है। अर्थ की जगह क्या हुआ? अनर्थ हुआ। शास्त्रों में लिखा रावण को 10 शीश थे, तो ज्यों का त्यों मान लिया, रावण को 10 शीश थे। हनुमान बंदर के जैसा था, गणेश हाथी के जैसा था, तो ज्यों की त्यों बातें शास्त्रों की स्वीकार कर ली, बुद्धि से मनन चिंतन मंथन कुछ भी हुआ नहीं। ओ।